जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन है वल्लभा जय गिरिवर जय गोपी जन है वल्लभा जय गिरिवर यशोदानंदन जय गज जनरंजन
माइक कम कर दिया, आवाज कम कर दी माइक की। हरि बोल
जय यशोदानंदन जय गज जनरंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमदेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सुमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सुमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सुमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 16 अध्याय का नाम है महाप्रभु की बाल्य तथा कैशोर लीलाएं और प्यार संख्या 55 से लेकर के 70 तक हम करेंगे। 70 में श्लोक को हम लोग दोहराएंगे। उसके पहले मैं पढ़ रहा हूँ अनुवाद और प्यारें। तो प्यार संख्या 55 है। इस श्लोक में अविमृष्ट विधेयांश दोष दो बार आया है और विरुद्ध मति भग्न क्रम तथा पुनरात दोष एक एक बार आए हैं। तो एक दोष है अविमृष्ट विधेयांश जो दो बार आया और विरुद्ध मति भग्न क्रम पुनरात दोष एक एक बार आए हैं। तो कुल मिला के कितने दोष हुए? 5 दोष हुए। अविमृष्ट विधेयांश द्विठाए चिन्ह विरुद्ध मति भग्न क्रम पुनरात दोष 3। प्यार संख्या 56 है। इस श्लोक का मुख्य अज्ञात विषय विधेय गंगा का महत्व महत्वम गंगाया है और अज्ञात विषय उद्देश्य इदम शब्द से सूचित होता है जो अज्ञात के बाद रखा हुआ है। गंगा रे महत्व श्लोके मूल विधेय इदम शब्द अनु इदम शब्द अनुवाद पाछे अभिधेय। प्यार संख्या 57। चूंकि आपने ज्ञात विषय को उद्देश्य या अनुवाद को अंत में रखा है और जो अज्ञात है विधेय उसे प्रारंभ में रखा है, अतएव ये रचना दोषपूर्ण है और शब्दों का अर्थ संदेहजनक हो गया है। विधेय आगे कही पाछे कहिले अनुवाद ए लागे श्लोक अर्थ करे आछे बाध। श्लोक संख्या 58। सर्वप्रथम ज्ञात का उल्लेख किए बिना अज्ञात को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसकी ठोस आधार भूमि नहीं होती उसे कहीं भी स्थापित नहीं किया जा सकता। अनुवाद मनुत्व न विधेयमुदीरयेत् न हि लब्धास्पदं किंचन कुत्रचिन प्रतितिष्ठति। तात्पर्य प्रभुपाद ने थोड़े से शब्द लिखे हैं। ये श्लोक एकादशी तत्व से है। अब प्यार संख्या 59 है। द्वितीय श्री लक्ष्मी शब्द में द्वितीय लक्ष्मी होने का गुण अज्ञात है। इस समास के बनाने से अर्थ गौण हो गया और अभिष्ट मूल अर्थ खो गया। द्वितीय श्री लक्ष्मी या द्वितीयत्व विधे समासे गौण हैला शब्दार्थ गेल छय। प्यार संख्या 60। चूंकि द्वितीय शब्द विधे अज्ञात है, अतः इस समास में लक्ष्मी की समता का जो अभिष्ट अर्थ था वो नष्ट हो गया है। द्वितीय शब्द विधे ताहा पढ़ी ले समासे लक्ष्मी रे समता का अर्थ करीला विनाशे। प्यार संख्या 61। ना केवल अविमृष्ट विधेयांश का दोष ही है, अभी तो एक अन्य दोष भी है जिसे मैं आपको इंगित करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। अविमृष्ट विधेयांश यही दोषेर नाम आर एक दोष आछे सुने सावधान। यहाँ पर एक अन्य महान दोष है। आपने अपने पूर्ण संतोष के लिए भवानी भर्तृ शब्द रखा है, किंतु इसमें विरुद्ध मतिकृत नामक विरोधाभास का दोष है। भवानी भर्तृ शब्द दिले पाई असंतोष विरुद्ध मतिकृत नाम ए महादोष। प्यार संख्या 63। भवानी का शब्दार्थ है शिव जी की पत्नी, किंतु जब हम उनके पति का उल्लेख करते हैं तो ये निष्कर्ष भी निकल सकता है कि उनका कोई दूसरा पति भी है। भवानी शब्द कहे महादेव रे गृहिणी तार भरता कहले द्वितीय भरता जानी। ये सुनना विरोधाभासी लगता है कि शिव जी की पत्नी का एक दूसरा पति है। साहित्य में ऐसे शब्दों के प्रयोग से विरुद्ध मतिकृत नामक दोष उत्पन्न होता है। शिव पत्नी भरता यह सुनिते विरुद्ध विरुद्ध मतिकृत शब्द शास्त्र न है शुद्ध। 65। यदि कोई कहे कि ये दान ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में दे दो, क्या कि ये दान ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में दे दो, तो इन विपरीतार्थी शब्दों को सुनते ही हम तुरंत समझते हैं कि ब्राह्मण पत्नी का कोई दूसरा पति भी है। ब्राह्मण पत्नी रे भर्तार हस्ते दे दान, शब्द सुनते ही है द्वितीय भर्ता ज्ञान। 66 विभवति यानी फलती फूलती है शब्द द्वारा कहा गया कथन पूर्ण है, किंतु इसके विशेषण के रूप में अद्भुत गुण रखने से पुनरुक्ति नामक दोष उत्पन्न होता है। विभवति क्रिया एवाक सांग पुनः विशेषण अद्भुत गुण ए पुनरात दूषण। इस श्लोक की 67वां इस श्लोक की 3 पंक्तियों में अद्वितीय अनुप्रास पाया जाता है, किंतु 1 पंक्ति में अनुप्रास बिल्कुल नहीं है, ये भग्न क्रम नामक दोष है। 3 पद अनुप्रास देखी अनुपम, 1 पद नहीं ए दोष भग्न क्रम। 68वां यद्यपि इस श्लोक में 5 अलंकार हैं, किंतु इन 5 दोषों के कारण पूरा श्लोक नष्ट भ्रष्ट हो गया है। भगवान उसकी अच्छी खिंचाई कर रहे हैं। 5 अलंकार हैं लेकिन 5 दोषों के कारण सब बेकार हो गया है श्लोक। यद्यपि यही श्लोक आछे पंच अलंकार ए पंच दोष श्लोक कई लक्षार खार। 69वां यदि किसी श्लोक में 10 अलंकार हो किंतु 1 भी दोष रहने पर पूरा श्लोक व्यर्थ हो जाता है, और आपके श्लोक में तो 5 अलंकार हैं और 5 दोष हैं। अगर 10 अलंकार हो और 1 दोष हो तो भी क्या हो गया, पूरा खराब हो गया। और आपके श्लोक में तो 5 दोष हैं। भगवान ने जो है कितना बुरी तरह से उसको जो है लताड़ा है। 10 अलंकार है जदि एक श्लोक है 1 दोष है सब अलंकार है 6। अब श्लोक प्यार संख्या 70 मेरे साथ बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। सुंदर शरीर जैसे भूषण भूषित एक श्वेत कुष्ठ जैसे कर ये विज्ञित। सुंदर शरीर जैसे भूषण भूषित एक श्वेत कुष्ठ जैसे कर ये विज्ञित। सुंदर शरीर जैसे भूषण भूषित एक श्वेत कुष्ठ जैसे कर ये विज्ञित। बोलिए श्रीधर। वैष्णव देवी शब्दार्थ सुंदर सुंदर शरीर शरीर जैसे जैसे भूषणे वा भूषणों से भूषित सजाया हो एक एक श्वेत कुष्ठे कुष्ठ रोग का एक श्वेत दाग जैसे जैसे कराए हो जाता है विज्ञित दोषी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। किसी का सुंदर शरीर रत्नों से क्यों ना अलंकृत हो किंतु यदि श्वेत कुष्ठ का एक भी दाग दिखे तो सारा शरीर घृणित हो जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा काव्य अलंकार के विद्वान भरत मुनि ने इस संबंध में अपना मत निम्न प्रकार से दिया है। वो श्लोक है जिसको हम नहीं ले रहे हैं, तो भरत मुनि ने जो है काव्य अलंकार के विद्वान है उन्होंने ये, तो ये जो सिद्धांत है वो कृष्णदास कविराज इस श्लोक के रूप में दे रहे हैं इसको पुष्ट करने के लिए, या चैतन्य श्री चैतन्य ही इसको पुष्ट कर रहे हैं। तो भरत मुनि का जो श्लोक है वो श्री चैतन्य ही उद्धृत कर रहे हैं इस बात को पुष्ट करने के लिए कि काव्य अलंकार में कोई भी कविता हो उसमें बहुत अलंकार हो, लेकिन एक दोष अगर है तो वो सब क्या हो जाता है, किरकिरा हो जाता है। ये एक उदाहरण हम देते हैं कि खूब बढ़िया खीर बनाई है, चावल दूध खूब बढ़िया, उसमें खूब मेवे है ना, काजू किसमें सब कुछ डाला है, सब कुछ डाला है, और थोड़ा सा राख या मिट्टी आप डाल दीजिए, थोड़ी सी चुटकी भर मिट्टी डाल दीजिए, कैसा हो जाएगा, सब स्वाद किरकिरा हो जाएगा, सब स्वाद किरकिरा हो जाएगा, है ना। तो हाँ श्री चैतन्य यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपकी कविता में बहुत गुण है, बहुत अलंकार है, ये एक दोष अगर है तो वो क्या हो जाता है, सब किरकिरा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जो साहित्य के जो रसिक लोग होते हैं तो उनको जो है फिर इसमें बड़ा दोष दिखाई पड़ता है, वो इसका आस्वादन नहीं कर सकते। तो श्री चैतन्य को भी कोई कविता या कोई रचना अगर सुनाई जाती है, कोई सुनाना चाहता है तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी देखते थे कि कोई रस में कोई आभास तो नहीं है, कोई रसाभास तो नहीं है, या सिद्धांत की दृष्टि से कुछ रचना गलत तो नहीं है। तो जब स्वरूप दामोदर अनुमति देते थे, अनुमोदन करते थे, तब श्री चैतन्य सुना करते थे ना। तो यहाँ पर श्री चैतन्य जो बात बता रहे हैं वो केवल अलंकारों की बात बता रहे हैं, अभी भक्ति से कोई संबंध नहीं है। और चूंकि जो केशव कश्मीरी पंडित हैं उनको बहुत गर्व है, तो गर्व को नष्ट करने के लिए श्री चैतन्य दोष निकाल रहे हैं, दोष बता रहे हैं ना। तो इसमें जो पांच प्रकार के दोष बताए हैं श्री चैतन्य ने, इनको मैं तेजी से पढ़ चुका हूँ, तो इनको समझेंगे। पहले भी हमने कुछ चर्चा की थी इस विषय में, तो इसमें भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, श्लोक लिखा हुआ है बोर्ड में जो केशव कश्मीरी ने श्लोक की रचना की थी गंगा जी के संबंध में, 100 श्लोकों में से एक श्लोक ये है, शायद 64वां श्लोक है। तो ये श्लोक जो है, इसी श्लोक पर गुण और दोष का जो है विचार कर रहे हैं श्री चैतन्य। श्री चैतन्य कह रहे हैं इस श्लोक में अविमृष्ट विधेयांश दोष दो बार आया है, और विरुद्धमति भग्नक्रम और पुनरात दोष एक एक बार आए हैं। तो अब अविमृष्ट विधेयांश दोष क्या है, पहला गंगार महत्व श्लोक के मूल विधेय, गंगा का जो महत्व है तो ये अज्ञात विषय है, और जो ज्ञात विषय है वह इदम यह है। तो जो बाद में रखा है क्या, किस प्रकार से रखा है, इसमें कैसा लिखा है, महत्वम गंगाया सततम इदम, महत्वम गंगाया का मतलब गंगा जी का महत्व, सततम इदम, इदम शब्द जो है बाद में आया, मतलब क्या है कि गंगा जी का महत्व यह है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पहले श्लोकों में गंगा जी का महत्व जो बताया है उन्होंने, केशव कश्मीरी ने जो वर्णन किया है गंगा जी का महत्व, जो वर्णन किया है, तो उसके विषय में अब ये कह रहे हैं कि गंगा जी का महत्व तो यह है, है ना, तो ये सही नहीं है, क्योंकि यह शब्द पहले होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ बोला है है ना, तो उसके बारे में पहले बोलें कि ये तो ये गंगा जी का महत्व, तो ये जो वाक्य है ये सही है, ये गंगा जी का महत्व आपने पहले बोल दिया, तो गंगा जी का महत्व कोई समझ नहीं रहा है कि गंगा जी का महत्व क्या है, जो कुछ भी बोला गया है क्या क्या बोला गया है, तो ये गंगा जी का महत्व। तो यहाँ पर एदम शब्द का जो प्रयोग है ये इन्होंने बाद में किया है, और गंगा महत्वम गंगाया ये शब्द पहले जो प्रयोग किया है, तो इसमें एक दोष हो रहा है। तो ये कह रहे हैं श्री चैतन्य कह रहे हैं कि ज्ञात विषय एदम है, ज्ञात विषय क्या है, एदम, कि जो कुछ भी मैंने बोला है ये, फिर हम अज्ञात विषय कहेंगे महत्वम गंगाया, ये गंगा जी का महत्व है। जैसे कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है तो मैं क्या कहूँगा कि ये व्यक्ति बहुत विद्वान है, तो ये व्यक्ति ज्ञात है, आप लोग देख रहे हैं ये व्यक्ति, फिर मैं कहूँ बहुत विद्वान है, तो बहुत विद्वान ये विशेषता अज्ञात है, तो मैंने बताया तो ये सूचना दी कि ये व्यक्ति बहुत विद्वान है। अगर मैं कहूँ बहुत विद्वान व्यक्ति ये है तो सही नहीं है, बहुत विद्वान आप कह रहे हैं है ना, तो वो तो अज्ञात है, बहुत विद्वान व्यक्ति है तो ये ठीक नहीं है। तो ये जो रचना का जो दोष है ये क्या है, अविधि अविमृष्ट विधेयांश ये कहलाता है। तो भगवान उनको बता रहे हैं कि पहला दोष ये है, पहला दोष ये है कि आपने ज्ञात विषय को अंत में रखा है, इदम यानी यह है, देख रहे हैं इदम बाद में आया ना, और जो अज्ञात है उसे प्रारंभ में रखा है, अतः विरचना दोषपूर्ण है और शब्दों का अर्थ संदेहजनक हो गया है, महत्वम गंगाया इदम, है ना, तो ये जो है सही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कोई बात समझना चाहता है तो पहले मैं क्या कहूँगा कि ये व्यक्ति है ना, फिर इसकी कुछ विशेषताएँ बताऊँगा जो आपको पता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से भगवान ने पहला दोष ये बताया। फिर दूसरा दोष क्या है, द्वितीय श्री लक्ष्मी रेव, ये तीसरी पंक्ति में द्वितीय श्री लक्ष्मी रेव, गंगा जी को क्या कहा गया है, द्वितीय श्री लक्ष्मी रेव, कि दूसरी लक्ष्मी के समान है, दूसरी लक्ष्मी के समान है गंगा जी, दूसरी लक्ष्मी के समान है, तो कहने का अर्थ क्या है कि गंगा जी लक्ष्मी के समान है, है ना, लेकिन द्वितीय अज्ञात है, द्वितीय अज्ञात है, तो आप जो है द्वितीय लक्ष्मी के समान है गंगा जी, इसका अर्थ फिर जो है बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो गया। इसका मतलब है कि दूसरी भी कोई लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो एक ही है, तो आप ये कह सकते हैं गंगा जी लक्ष्मी के समान है, लक्ष्मी जी के समान है, लेकिन द्वितीय अज्ञात है और द्वितीय है भी नहीं, दूसरी लक्ष्मी है भी नहीं है? तो आप गंगा जी की तुलना लक्ष्मी जी से ना करके दूसरी लक्ष्मी से कर रहे हैं, गलत है, दूसरी लक्ष्मी है ही नहीं, एक ही लक्ष्मी तो ये भी जो है अविमृष्ट विधेयांश है, द्वितीय अज्ञात है, दूसरी लक्ष्मी, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं द्वितीय श्री लक्ष्मी शब्द में द्वितीय लक्ष्मी होने का गुण अज्ञात है, इस समास के बनाने से अर्थ गौण हो गया, अभीष्ट मूल अर्थ खो गया। अब कोई व्यक्ति यही सोचेगा दूसरी लक्ष्मी कहाँ से आ गई, तो जो दूसरी आगे जो बात है जो आप कहना चाहते हैं वो दिमाग से निकल जाएगी कि गंगा जी लक्ष्मी जी के समान है। कोई भी शब्द जो है अज्ञात होता है, आप पहले उस शब्द को बोलते हैं तो आपका जो बोलने का जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए बोलना है आपको तो शब्दों का बहुत चुनाव करके बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान जो है अविमृष्ट विधेयांश का ये दूसरा दोष इस श्लोक में बता रहे हैं, क्योंकि द्वितीय शब्द अज्ञात है अतः इस समास में लक्ष्मी की समता का जो अभीष्ट अर्थ था वो नष्ट हो गया है। ना केवल अविमृष्ट विधेयांश का दोष अपितु एक अन्य दोष है, अन्य महान दोष है, आपने अपने पूर्ण संतोष के लिए भवानी भर्तृ शब्द रखा है। क्या लिखा है, भवानी भर्तु, भवानी भर्ता है ना, तो भवानी भर्ता शब्द रखा है, इसमें विरुद्ध मतिकृत दोष है। भवानी शब्द का अर्थ है शिव जी की पत्नी। भवानी शब्द बना कैसे? भव से, और भव का मतलब शिव है, तो भवानी शब्द का अर्थ ही है भव की पत्नी। और फिर आपने कहा भवानी भर्ता, इसका मतलब क्या हुआ कि शिव की पत्नी का पति। तो शिव जी की चर्चा आप कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं कि शिव जी की पत्नी के पति, आप कहें इस तरह से शिव जी की पत्नी के पति हैं। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि भवानी शब्द का अर्थ है शिव जी की पत्नी, किंतु जब हम उनके पति का उल्लेख करते हैं तो इससे निष्कर्ष ये निकल सकता है कि उनका कोई दूसरा पति है। तो कितना अनर्थ हो गया, ये सुनना विरोधाभासी लगता है कि शिव जी की पत्नी का एक दूसरा पति है। साहित्य में ऐसे शब्दों के प्रयोग से विरुद्ध मतिकृत नामक दोष उत्पन्न होता है। तो भवानी भर्ता शब्द का प्रयोग करके आपने किसी व्यक्ति के मन में एक संदेह पैदा कर दिया, वो संदेह में उलझ जाएगा और वो आपकी बात को नहीं समझ पाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। कि शिवजी जो है शिवजी के सिर में शोभायमान है गंगा जी। भवानी भर्तु रिया सिरसि विभवती, जो भवानी भर्ता के सिर में शोभायमान है गंगा जी। लेकिन भवानी भर्ता शब्द का प्रयोग करके उस व्यक्ति के मन में ऐसा संदेह पैदा कर दिया आपने कि अब वो जो है वो बात नहीं सोचेगा जो आप कह रहे हैं, तो ये दोष है, हैं? तो भगवान जो है इससे एक शिक्षा भी दे रहे हैं कि हम कोई भी बात बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं तो आगे पीछे का जो क्रम है वो नहीं सोचते, और उससे क्या होता है जो व्यक्ति आपकी बात समझना चाहता है वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा। तो ऐसी जल्दी जल्दी में कोई बात नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि कोई शब्द आप पहले कोई शब्द बाद में आप बोल रहे हैं जिससे कि वो समझ ही नहीं पाएगा, बल्कि और दूसरे उसके प्रश्न उठ जाएंगे और दूसरे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो हाँ भगवान कह रहे हैं, तो दो दोस्त तो ये बताए, नहीं कितने हो गए, तीन हो गए, तीन दोस्त हो गए, अब चौथा नहीं इसी में ही अभी भगवान बोल रहे हैं। यदि कोई कहे ये दान ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में दे दो, क्या ये दान ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में दे दो, तो इन विपरीतार्थी शब्दों को सुनते ही हम तुरंत समझते हैं कि ब्राह्मण पत्नी का कोई दूसरा भी पति है, है ना, गलत है ना। विभवती, अब पांचवा दोष, कितना है पांचवा, चौथा, चौथा विभवती यानी शोभायमान है, शब्द द्वारा कहा गया कथन पूर्ण है, शोभायमान है, क्या भवानी भर्तु या सिरसि विभवती, जो शिव जी के सिर में शोभायमान है, है ना। तो यहाँ वाक्य पूरा हो गया, किंतु इसके विशेषण रूप में अद्भुत गुणा रखने से पुनरुक्ति नामक दोष उत्पन्न होता है। ये पुनरुक्ति अद्भुत गुणा, ये जो है दोबारा जो आपने बोल दिया अद्भुत गुणा, तो ये जो है एक दोष है, क्योंकि यहाँ वाक्य पूरा हो गया। तो ये चार दोष भगवान ने बताए। अब भगवान कह, इस श्लोक की तीन पंक्तियों में अद्वितीय अनुप्रास पाया जाता है, तीन पंक्तियों में अद्वितीय अनुप्रास, किंतु एक पंक्ति में अनुप्रास बिल्कुल नहीं है, ये भग्न क्रम नामक दोष है। तो इस पर मैं विचार कर रहा था, तो पिछली बार जो मैंने समझाया था जब जनार्दन महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो वो मैं ठीक से नहीं समझा पाया, क्योंकि प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि पहली और तीसरी और चौथी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और दूसरी में नहीं है, तो मैं कुछ दूसरी तरह से समझा रहा था तो वो सही नहीं था। अब मुझे समझ में आया जब ज़्यादा इसमें विचार किया, तो अनुप्रास अलंकार और यहाँ पर अद्वितीय अनुप्रास मिल रहा है। अद्वितीय का मतलब है दो से ज़्यादा, किसी भी पंक्ति में अगर दो से ज़्यादा बार कोई अक्षर आता है तो वो अद्वितीय अनुप्रास कहलाता है। कोई भी अक्षर किसी पंक्ति में दो से ज़्यादा बार आए तो अद्वितीय अनुप्रास अलंकार आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तीन पंक्तियों में यानी पहली तीसरी चौथी पंक्ति में अद्वितीय अनुप्रास अलंकार है, जिसको आप देखिए, क्योंकि मैंने इसी बोर्ड में लिखवाया है, क्योंकि पहली पंक्ति में आप देखिए अद्वितीय अनुप्रास अलंकार है। पहली पंक्ति में जो ता अक्षर है ये चार बार आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, ता अक्षर का प्रयोग चार बार हुआ है श्लोक, देख रहे हैं चार बार है, कितने बार आया है देखिए, चार बार आया है या ज्यादा? आधा ता का विचार नहीं करते, आधा ता जो अक्षर है, आधा कोई भी अक्षर होता है उस पर उसको गिना नहीं जाता है, उस पर विचार नहीं किया जाता है, चार बार आया है ना। कुल मिला के प्रत्येक पंक्ति में 17 अक्षर हैं, ये श्लोक की रचना का नियम है। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं, ये भी आप हमेशा जांच कर सकते हैं। जो गीता के भी श्लोक हैं उनमें आप देखें प्रत्येक पद में 8 अक्षर होते हैं, और ये जो है श्लोक है इसमें प्रत्येक पद में 17 अक्षर हैं। तो पहली पंक्ति में जो ता अक्षर है ये 3 बार नहीं, कितने बार? 4 बार आया है ना। इसके अलावा और भी कोई अक्षर है जो 3 बार आया है? माँ, देख रहे हैं, माँ 3 बार आया है, आया हाँ। तो मतलब इसकी ये शोभा है, इस पंक्ति की शोभा है, 2 बार से ज़्यादा कोई अक्षर आता है तो वो अनुप्रास अलंकार, अद्वितीय अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। 2 बार आए तो उसका विचार नहीं करते, तो अनुप्रास अलंकार है लेकिन अद्वितीय नहीं है, तो ज़्यादा शोभा नहीं, उसकी विशेष अलंकार नहीं माना जाएगा, अद्वितीय अलंकार है। फिर दूसरी पंक्ति में आप देखिए अणा, अणा अक्षर 2 बार आया है, आया है? एक तो है विष्णु, दूसरा चरण, अणा अक्षर 2 बार आया है, है ना, 2 बार आया है, लेकिन ये अद्वितीय अनुप्रास नहीं है, 2 बार का विचार नहीं करते हैं। इसी प्रकार से रा अक्षर भी 2 बार आया है, आया दूसरी पंक्ति में रा अक्षर 2 बार आया है, हा? एक तो आया है श्री, श्री श्री में आधा शाह है और रा पूरा है, तो एक तो ये है श्री और दूसरा चरण, तो रा 2 बार आया है ना, तो अणा भी 2 बार आया, रा भी 2 बार आया, लेकिन ये अद्वितीय अनुप्रास अलंकार नहीं है, कोई भी नहीं, तो इसमें जो है ये भग्न क्रम हो गया। बाकी तीसरे में है और चौथे में है, तीसरे में देखिए रा अक्षर 6 बार आया है, देख रहे हैं तीसरे पंक्ति में रा अक्षर 6 बार आया है, श्री एक तो श्री हाँ, फिर दूसरा लक्ष्मी रिव इसमें भी रहा 2, फिर सुर इसमें रहा 3, फिर नरे 4, फिर रर्च रा फिर आया 5, फिर चरणा 6, तो 6 बार आया है। और भी कोई अक्षर आया 2 बार या 2 बार आया, या 2 बार आया कहाँ पर आया? द्वितीय में आया है और नरे रर्च है यहाँ पर भी आया 2 बार, लेकिन उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, श्री चैतन्य उस पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि अद्वितीय अनुप्रास नहीं है ना, लेकिन अद्वितीय अनुप्रास है किसमें? रा अक्षर में, रा अक्षर में है, तो तीसरा में अद्वितीय अनुप्रास है। फिर चौथे में आप देखिए भा अक्षर 4 बार आया है, एक तो भवानी में, फिर भरतूर 2 हो गया, विभवती 3 हो गया, अद्भुत है, तो दा आधा है और भा पूरा है, इस प्रकार से 4 बार भा अक्षर आ रहा है, तो ये है इसमें है। और वा अक्षर 2 बार आया, देख रहे हैं वा अक्षर 2 बार आया, एक तो भवानी और दूसरा विभवती 2 बार आया, लेकिन उस पर विचार नहीं करेंगे, अद्वितीय अनुप्रास नहीं है। ता अक्षर भी 2 बार आया है, क्या 3 बार आया, कहाँ पर? अद्भुत है भवानी, अच्छा अच्छा नहीं भा, क्षमा करें भा तो 4 बार आया है, वाह वाह 3 बार आया है, अच्छा भवानी एक तो योग्य भवानी, दूसरा विभवती 2, विभवती हाँ 2, ठीक क्षमा धन्यवाद, तो वाह भी 3 बार आया, तो ये भी अद्वितीय अनुप्रास है ना, वाह 3 बार आया, और ता 2 बार आया, ता 2 बार आया, भवानी भरतुर और अद्भुत है उसमें ता है, ठीक है, तो ता 2 बार आया। तो पहली तीसरी और चौथी पंक्ति में अद्वितीय अनुप्रास है, लेकिन दूसरी पंक्ति में नहीं है, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये भग्न क्रम है, ये क्या हो गया, क्रम भग्न हो गया, टूट गया, तो ये जो है दोष है, भग्न क्रम नामक दोष है। तो इस तरह से भगवान केशव कश्मीरी को लज्जित कर रहे हैं, है ना। अब श्री चैतन्य के आठ श्लोक हम रोज पढ़ते हैं, आठ श्लोक हम जो रोज पढ़ते हैं शिक्षाष्टकम के, इनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हाँ ये दोष जो भगवान ने बतलाए हैं ये दोष मिलते हैं, चाहे आप श्रीमद् भागवत में देखें तो श्लोक मिलेंगे, ये दोष मिलेंगे, या वाल्मीकि रामायण देखें तो उसमें भी ये दोष मिलेंगे, जयदेव का गीत गोविंद देखें इसमें भी दोष मिलेंगे, ऐसे दोष हैं। गीत गोविंद में भी एक जगह कहा मूढ़ो मृडानी पति ही, मूढ़ो मृडानी पति, मृडानी पति शिव जी को कहा गया, मृडानी पति, मृड का मतलब शिव और मृडानी का मतलब शिव जी की पत्नी फिर पति, लेकिन भक्ति की रचनाओं में दोष कभी नहीं देखा जाता। जैसे ईश्वरपुरी ने कृष्ण लीलामृत नामक एक ग्रंथ लिखा था, तो श्री चैतन्य से बोले कि इसमें दोष बताओ तो मुझे संतोष मिलेगा। ईश्वरपुरी श्री चैतन्य से कहते हैं कि मेरी जो पुस्तक है कृष्ण लीलामृत है, इसमें तुम दोष मुझे बताओ तो मुझे बड़ा संतोष मिलेगा। लेकिन श्री चैतन्य कहते हैं कि एक तो भक्ति की वाणी और दूसरा कृष्ण का चरित्र है, जो दोष देखता है वो पापी है। तो भगवान के मैं इतना पाप नहीं करना चाहता, मैं दोष भक्ति रचना जैसी भी हो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, और प्रभुपाद ने भी उद्धृत किया श्रीमद् भागवत के प्रत्येक खंड में प्रभुपाद ने जो है ये श्लोक उद्धृत किया, भागवतम का ही है, तद्वाग विसर्गो जनदाग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम अबद्ध बत्यति नामानंतस्य यशोंकितानियत छिड़मन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। जो साधु हैं वो उसमें जो है अबद्धवति मतलब जो है रचना में जो है वो क्रम अगर टूटा हुआ है लेकिन नामानंतस्य यशोंकितानि, तो भगवान के जो है नाम है जो यश अंकित नाम है, तद्वाग विसर्गो जनता के विप्लवो, तो जनता के पापों का नाश करने वाली वो रचना है। यस्मिन प्रति श्लोकम प्रति श्लोक में अबद्धवती भी अबद्ध तरीके से भी क्रमबद्ध नहीं है लेकिन अनंत भगवान के नामों नाम है, यशोंकितानित जो यश अंकित हैं उनके यश अंकित नाम है, श्रवंति गायंति गृणंति साधवा, जो साधु हैं उनको सुनते हैं और गान करते हैं और प्रशंसा करते हैं तो कभी दोष नहीं निकालते। तो वही भगवान जो है अपने गुरु ईश्वरपुरी की रचना में दोष निकालने के लिए मना कर रहे हैं, कहते कि मुझे बड़ा दोष लगेगा अगर मैं आपकी पुस्तक में दोष निकालूंगा तो मुझे बड़ा दोष लगेगा, और जबकि वो कह रहे मुझे बड़ा संतोष होगा, तुम दोष बताओगे मेरी पुस्तक में तो मुझे बड़ा संतोष होगा, और भगवान कहते हैं लेकिन मुझे तो बड़ा दोष लगेगा। और यहाँ केशव कश्मीरी ये नहीं कह रहा है कि मेरी रचना में दोष निकालो, और भगवान दोष निकाल रहे हैं और वो बड़ा लज्जित हो रहा है, क्योंकि वो लज्जित करने के लिए ही उसने सब जो कुछ भी बोला है वो लज्जित करने के लिए बोला है, वो न तो गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए न कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसने जो श्लोकों की रचना की है उसमें गंगा जी की प्रसन्नता का भाव नहीं है, हालांकि गुणगान किया है, न कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव है। तो वो चूंकि सबको लज्जित करना चाहता है, अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, तो इसलिए भगवान ने उसको लज्जित करने के लिए इस प्रकार से दोष बताए। और भगवान ने जो है ये जो सत्तरवीं प्यार है इसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, किसी का सुंदर शरीर रत्नों से क्यों ना अलंकृत हो किंतु यदि सफेद कुष्ठ का एक भी दाग दिखे तो सारा शरीर घृणित हो जाता है, एक भी दाग। इसलिए बहुत ध्यान से जो है अगर किसी का श्रृंगार किसी स्त्री के शरीर का श्रृंगार किया जाता है तो पहले अगर कुछ दाग वगैरह सब हाँ, उसके ऊपर जो है कुछ कलर करके या कैसे भी है उसको ढका जाता है, है ना। प्रभुपाद भी जो है जब श्रृंगार देखते हैं, राधा रानी का जो है श्रृंगार देखते हैं, हैं, तो दूर से भी छोटा सा दाग चेहरे में उनको दिखाई दिया, बोले नहीं दाग है इसको छुड़ाओ। भक्त लोग कहते हैं नहीं हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन प्रभुपाद कहते नहीं है, और प्रभुपाद स्वयं गए उस दाग को छुड़ाया राधा रानी के चेहरे से। तो कोई भी शोभा, किसी भी चीज की शोभा तब होती है जब कोई दाग ना हो। उसी प्रकार से श्री चैतन्य भी सन्यासी के जीवन में जो है कोई कलंक नहीं चाहते कि कोई थोड़ा सा भी कलंक हो। और जो है दामोदर पंडित ने जब बताया श्री चैतन्य को तो उन्होंने धन्यवाद दिया। तो श्री चैतन्य क्या कर रहे थे कि जहाँ जहाँ पर वो रहते थे तो सामने ही एक विधवा स्त्री थी, वो सुंदर थी, जवान थी, और उसका जो पुत्र था वो श्री चैतन्य के पास आता था और श्री चैतन्य उससे प्रेम करते थे, तो वो जो है बार बार आता था, क्योंकि बच्चे हैं वो तो प्यार पाने के लिए हमेशा बहुत लुब्ध होते हैं, तो वो बार बार आता था। तो दामोदर पंडित ने कहा कि नहीं नहीं आप इस बच्चे से प्रेम मत करिए, क्योंकि लोगों की नज़रों में क्या होगा, हाँ आप भी सुंदर हैं, आप भी जवान हैं, और सामने जो विधवा रहती है वो भी सुंदर है, जवान है, आप उसके पुत्र से प्रेम कर रहे हैं तो लोग जो है क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ संबंध है। और श्री चैतन्य कह रहे हैं कि सन्यासी का जो जीवन है वो बहुत मतलब वैसा होना चाहिए कि किसी प्रकार का भी कलंक ना दिखाई दे, जैसे कि बहुत साफ कपड़ा है, आपने कपड़े को बहुत साफ किया है, खूब चमकाया है, और एक दाग स्याही का उसमें लगा हुआ है तो वो ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, और गंदे कपड़े में स्याही के दाग लगे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कितने दाग लगे हैं, तो एक और दाग लगे तो क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों के लिए भी जो है बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि आपके आचरण में, आपके स्वभाव में अगर कोई थोड़ा सा भी दोष दिखाई दे तो लोगों को वो खटकेगा, बहुत खटकेगा कि ये कृष्ण के भक्त हो करके ऐसा कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ऐसी चेष्टा कैसे कर रहे हैं। तो ये सब जो है बड़ी गंभीर बातें होती हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो इतना साफ मैंने कपड़ा किया है तो वो तो देखते नहीं और दोष निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर जो शिक्षा है वो यही है कि अगर आपको कुछ सजाना है या शोभा पैदा करना है तो इस तरह से करो कि उसमें फिर कुछ दोष ना हो। अगर कुछ दोष बना हुआ है तो पहले उसको दूर करो, फिर आप और सजावट करो, या सजावट खूब कर रहे हैं, सजावट तो खूब कर रहे हैं, लेकिन वो जो चिन्ह हैं वो आपके बने हुए हैं उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो है जो दोष हैं, जो कमियां हैं उनको दूर नहीं कर रहे हैं, और बहुत से गुण हैं वो सब बेकार हो जाते हैं, आपके अंदर जितने भी गुण हैं वो सब बेकार हो जाते हैं अगर एक छोटा सा भी दोष मिल जाए। तो श्री चैतन्य मतलब जो चेतावनी दे रहे हैं, तो हालांकि उसके लिए तो वो बात लागू नहीं हो रही है, क्योंकि भक्ति की रचना है तो इसमें कोई मतलब दोष नहीं देखा जाता, लेकिन वैसे हम लोगों के लिए इसमें बड़ी शिक्षा मिल रही है कि हमारे व्यवहार में अगर कुछ कमी होती है तो वो जो है लोगों को बहुत खटकेगी, नहीं तो वो बोलते हैं हरे कृष्ण के भक्त कितने अच्छे हैं, इनका कैसा अच्छा व्यवहार है, कैसे अच्छे तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं। अगर थोड़ा भी दोष होता है, अगर आप ऐसे थोड़ा सा मुँह बनाते हैं, इसमें आपका सब गुण खत्म हो गए, आपके जितने गुण हैं सब खत्म हो गए, सब गुण खत्म हो गए, क्या आपका गुण है, क्या भक्ति है, कोई नहीं समझेगा कि आप अच्छे भक्त हैं, कोई कुछ भी नहीं। बाहर के लोग भी जो है बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, और आप आपके जितने गुण हैं कुछ नहीं माना जाएगा, जैसे कि बहुत बढ़िया आपने खीर बनाई है और बहुत स्वादिष्ट है और कई प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, थोड़ा सा आप जो है सब में जो है धूल ऐसे से डाल दिया, नमक की तरह थोड़ा थोड़ा डाल दिया, क्या हो गया? सब बेकार, कोई तारीफ नहीं करेगा कि कितना अच्छा बनाया है, आपने बहुत परिश्रम किया, सब बेकार। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, भक्त में एक भी दोष नहीं दिखाई देना चाहिए, भक्ति व्यवहार में एक भी दोष नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत गहरी हैं, बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। और नहीं तो क्या है, हम तो किसी को ही बोलते हैं कि आपके अंदर भी तो यही दोष है, आपके अंदर भी तो यही दोष है, किसी को भी बोल सकते हैं, गहराई ना देख करके हम किसी को भी बोल सकते हैं कि इनके अंदर भी दोष है, उनके अंदर भी दोष है, मेरे दोष क्यों बता रहे हैं, मेरे गुण क्यों नहीं बता रहे, मेरा दोष क्यों बता रहे। तो बहुत गुण है, लेकिन कुछ भी अगर दोष है तो वो जो है कहा जाता है कि भाई गुण तो हैं, श्री चैतन्य ने कहा पांच अलंकार हैं, गुण भी केवल दोष नहीं देख रहे हैं, गुण भी देख रहे हैं, फिर भी बता रहे हैं कि दोष जो है ये खटक रहे हैं, इसलिए गुणों का फिर महत्व घट जाता है, गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहना है और अपने को जो है सुधारना, अगर कुछ भी गुण ऐसा हो क्या तरीका है, इस तरीके से जो है आपके जो है कोई भी गुण नहीं देखे जाएंगे, आपको भक्त नहीं माना जाएगी, कैसा भक्त है, आप समझ रहे हैं। हमें भी सुधरना है, आपको भी सुधरना, सबको सुधरना है, मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, आपके लिए, हमारे सबके लिए है, हमें समझना है और दिन रात इस बात पर विचार करना है, ये नहीं कि नहीं, नहीं इस इन बातों पर क्या विचार करना है, हमें तो, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, और क्या है, सब कर रहे हैं। आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं, अभी समय है, मैं प्रश्न करूं, हाँ जी मधु मंगल प्रभु, अच्छा इधर भी मधु मंगल प्रभु, ये हेड माइक तो अच्छा नहीं है, हाँ आप जोर से बोलिए, हाँ इनका अच्छा प्रश्न है कि हमारे अंदर अगर कोई दोष है हमें कोई नहीं बताएगा, इसलिए भक्तों का संग है, हम लोग भक्तों के समाज में होते हैं तो हमें जो है एक दूसरे का संग करना चाहिए, और दूसरे भक्तों के संग में हमें अपने आप दोष दिखाई पड़ेंगे, अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि मेरा कैसा भाव है, मेरा कैसा चेहरा बना हुआ है, तनाव गुस्सा मेरे चेहरे में दिखाई दे रही है, और जो दूसरे भक्त में कैसे विनम्र हैं, कैसे प्रसन्न हैं। तो साधु संग का मतलब ये है कि हम साधु संग करते हैं, तो असली साधु संग ये है, तो आपको दिखाई देगा कि आपके अंदर क्या दोष है और इनके अंदर दोष नहीं है, इनका जो है कितना मन लगता है और मेरा जो है मन नहीं लगता जप करने में, तो दिखाई पड़ता है। तो अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा, और ना देखें और दोष दूसरों के दोष निकालें तो अलग बात है, वो साधु संग नहीं कहलाता, तो फिर साधु संग नहीं है, आप केवल दोष देखते हैं, कोई गुण नहीं देख रहे हैं दूसरों के, अपने अंदर दोष नहीं देखना है और दूसरों के गुण नहीं देखना है, दूसरों के दोष ही देखना है, अपने गुण ही देखना है, अगर यही विचार रखा है तो फिर साधु संग का कोई अर्थ नहीं है, फिर भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति रुचि आसक्ति तो बहुत दूर है, आप साधु संग ही धरातल पर नहीं है, दूसरों में कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, मैं रहता हूँ साधुओं के साथ, साधुओं के समाज में रहता हूँ, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है और किसी के अंदर गुण नहीं है, तो क्या साधु संग। और कोई, हाँ जी जोर से बोलो, जोर से, इससे अगर काम चले तो बोलो, अच्छा नहीं है हैंड माइक में से,
बोल
जोर से बोलो,
जैसे
हाँ, कुछ लोग तो ऐसे है, मध्यम अधिकारी का ये लक्षण बताया गया है कि ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दशसु च, चार प्रकार के व्यवहार होते हैं उसके। ईश्वर के प्रति प्रेम करता है, ईश्वरे तदधीनेषु, और जो भगवान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, उनसे मैत्री करता है। हाँ, बालिशेषु, जो अज्ञानी है तो उन पर वो कृपा करता है, और दुसत्सु, और जो द्वेषी हैं तो उनकी उपेक्षा करता है। दोषी है तो वो केवल दोष निकालेगा लेकिन वो सुनेगा नहीं, वो दोष बताता है तो इसलिए नहीं बताता है कि आप उसके उत्तर दें, वो दोष केवल इतनी बताता है चुनौती के लिए कि ये दोष है आपके अंदर। तो जो इस प्रकार के द्वेषी लोग होते हैं, जो केवल दोष ही बताते हैं और वे गुण नहीं सुनना चाहते हैं और उसका उत्तर भी नहीं जानना चाहते कि अगर मुझे कुछ दोष दिखाई दे रहा है तो मेरी दृष्टि में ही कुछ दोष है, तो आप बताइए कि मेरी दृष्टि सुधरे, तो एक तरीका ये होता है पूछने का। तो वो कोई व्यक्ति आपके गुण देखना चाहता है, ये हरे कृष्ण आंदोलन के गुण देखना चाहता है, कुछ दोष दिखाई दे रहा है तो वो पूछता है कि ये दोष है मुझे दिखाई दे रहा है तो इसका क्या उत्तर है। तो वो अगर इस तरह से पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं, तो उसकी भ्रांति को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई द्वेषी है तो द्वेष के कारण वो कुछ अगर बोल रहा है तो वो बोलते ही जाएगा, वो सुनेगा नहीं कुछ भी, उनका उत्तर नहीं सुनेगा। तो इस तरह से तो दोष जो है निकालने वाले भगवान पर भी दोष निकालते हैं, तो हम क्या हैं? अगर हमारे अंदर कोई दोष निकाले तो क्या आश्चर्य है, भगवान पर भी दोष, भगवान को भी दोष निकाले। श्री राम का चरित्र कितना निष्कलंक है, कितना शुद्ध है, तो उसमें भी राम के चरित्र में भी दोष निकाला, सीता के चरित्र में दोष निकाले, तो दोष निकालने वाले तो फिर दोष ही निकालेंगे, उनका जो है काम ही है वो गुण देखेंगे नहीं। कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि भाई आपके समाज में बहुत गुण हैं लेकिन कुछ दोष मुझे दिखाई दे रहा है, इसका जो है मैं समाधान चाहता हूँ, तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें जो है मध्यम अधिकारी की तरह व्यवहार करना है। तो जो द्वेषी हैं तो उनकी उपेक्षा ही करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति व्यर्थ की बकवास करेगा, विवाद तो उसका इरादा केवल विवाद करने का है, विद्या विवाद आए, उसके पास कुछ विद्या है तो केवल उसका उपयोग करता है विवाद करने के लिए। विद्या विवाद आए, धनम मद आए, जो दुष्ट होता है उसके पास विद्या होती है तो विवाद करने के लिए होती है, धन होता है मद के लिए होता है, उसका चेहरा जो है एकदम आसमान की तरफ वो देखता है, धन है, धर्म मद आए, शक्ति परेशान पर पीड़ना है, उसके पास शक्ति होती है तो दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। खलस साधु विपरीत मित्र, तो जो दुष्ट है उसके पास ये तीन चीज़ें इस कारण इस प्रकार से होती हैं। लेकिन साधु के पास तीन ही चीज़ें होती हैं, ज्ञान आए, ध्यान आए, चरक्षण आए। जो विद्या होती है वो ज्ञान देने के लिए होती है, उसके पास विद्या है तो वो दूसरों को ज्ञान देगा, विवाद नहीं करेगा, ज्ञान देगा, ज्ञान आए। धनम दान आए, धन है तो दान करेगा, वैष्णवों को दान करेगा, और शक्ति है तो रक्षा करेगा, दीनों की रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से जो है अच्छा ऋषि कुमार प्रभु, नहीं इसमें भी विचार, नहीं इसमें भी विचार करने की जरूरत है कि उसने कितना दुर्व्यवहार किया है और उसको कितना स्वीकार कर रहा है, कितना स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इस आधार पर उसके हरे कृष्ण का उत्तर दिया जा सकता है या ना दिया जाए, ये विचार करने की बात है। हमेशा हरे कृष्ण का उत्तर भी नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपराध तो करता जाता है, बार बार आपके सिर में डंडा मार रहा है और फिर बोलता है हरे कृष्णा, आप क्यों नहीं बोलते हरे कृष्णा, अब क्या मैं हरे कृष्णा बोलूँगा, मेरे से मैं डंडा मारते जाते हो और कोई बोल रहे हरे कृष्णा बोलो, तो कोई तरीका है? हरे कृष्णा हाँ, लेकिन तो भी अगर वो अपराध कर रहा है तो उसका हरे कृष्णा भी जो है दूषित है, उसका हरे कृष्ण भी जो है ये अपराध, और अपराध जो है आपको नरक में भी ले जा सकता है। नाम का जो अपराध है ये आपको नरक में भी ले जा सकता है। ये भगवान का नाम अब नहीं है, भगवान का नाम ये अपराध है, नाम का अपराध है, आपको नरक में भी ले जा सकता है। तो इसका उत्तर नहीं दिया जाता कोई व्यक्ति इस प्रकार से अगर अपराध करता है। हाँ जी आप बोलिए। हाँ इनका प्रश्न, कोई सीनियर है उनका कुछ अगर ऐसा अन्याय होता है, अन्याय को पूर्ण व्यवहार होता है तो देखना पड़ता है, क्योंकि गीता में भगवान भी कहते हैं कि भीष्म और द्रोण चूँकि अन्याय के पक्ष में हैं तो सम्मान खो चुके हैं। तो प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिख रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कैसे उनसे युद्ध करूँगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपना सम्मान खो चुके हैं, अब सम्मान के योग्य नहीं रहे। फिर भी भीष्म द्रोण का सम्मान किया अर्जुन ने, ऐसी बात नहीं है सम्मान किया, लेकिन कुछ कमी भी रही, ठीक है ना, और युद्ध किया। तो इस तरह से कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन पर विचार करना होता है कि हमें क्या व्यवहार करना है, कैसा व्यवहार नहीं करना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराशि चैतन्य चरितामृत की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो। हरिओम। अब किसी को कहना है तो अलग से बोल सकते हैं।